Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique Studio Plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your Studio Plus suite today at livepreferred.com.
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੀਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਪੁੰਨਿਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਾਪੀ, ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਪੁਰਸ਼, ਸਦਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਸਭ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਗੀਤਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਉਧਾਰ ਦਾ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਨਿਆ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੈ ਉਸੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਯਥਾਰਥ ਗੀਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਾਤਮਨੇ ਨਮਹਿ। ਯਥਾਰਥ ਗੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਆਰੰਭ, ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ। ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਹੈ। ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੌਰਵ ਪਾਂਡਵ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮਾਤਰ ਅਰਜੁਨ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਹੀ ਅਰਜੁਨ ਹੈ। ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਰਾਗ ਹੀ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰਗਿਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਆਰੰਭਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੂਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਤ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਅਥਰੂ ਬਹਿ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ, ਕੰਠ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਜਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਨਿਯਮ, ਸਤਸੰਗ, ਭਾਵ ਸਭੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੋਹ ਬਾਧਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਧੁਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਤਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਲ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਲੋਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵੇਛਾਚਾਰ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕੁਰੀਤੀ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ, ਅਨੇਕ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਅਸੰਖੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੱਕ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਫਾੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੋਹਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਛੂਤ ਜਾਂ ਛੋਹਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ ਕੰਬਲ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਬਲ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੋਵਰਤਕ ਅਰਥਾਤ ਗਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਕਰ ਵਰਤਕ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ठीक इसे प्रकार कृष्ण काल विच भी संप्रदाय सन, कुरितियां सन। उना विचों एक अद्ध कुरिति दा शिकार अर्जुन भी सी, उसने चार तर्क पेश कीते, ऐसे युद्ध नाल सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होएगा, पिंडोदक क्रिया लोप होएगी, असी लोग कुल नाश द्वारा महापाप करनु तैयार होए हां। इसते योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, संजय उवाच।
तथा कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः।
करुणा नाल भरपूर अथरु परे व्याकुल नेत्रां वाले उस अर्जुन दे प्रति मधुसूदन मद दा विनाश करन वाले भगवान ने एह वचन कहा। श्री भगवान उवाच।
तस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं अकीर्तिकरमर्जुन।
अर्जुन, इस विषम स्थल ते तैनू एह अज्ञान कित्थों हो गया? विषम स्थल अर्थात जिस दी समता दा सृष्टि विच कोई स्थल है ही नहीं, पारलौकिक लक्षण है जिसका, उस निर्विवाद स्थल ते तेनु अज्ञान कित्थों होया? अज्ञान क्यों? अर्जुन ता सनातन धर्म दी रख्या लई दृढ़ संकल्प है कि सनातन धर्म दी रख्या लई प्राण पण नाल तत्पर होना अज्ञान है। श्री कृष्ण कहंदे हन, हां एह अज्ञान है, ना ता संभावित पुरुषां द्वारा इसका आचरण कीता गया है, ना एह स्वर्ग ही देण वाला है, अते ना ही एह कीर्ति देण वाला है। सत मार्ग उत्ते जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसनू आर्य कहंदे हन। परिवार लई मरना मिटना जे अज्ञान ना हुंदा ता महापुरुष उस उत्ते जरूर चले हुंदे। जे कुल धर्म ही सत्य हुंदा ता ओ स्वर्ग अते कल्याण दा साधन जरूर बनदा। एह कीर्ति दायक भी नहीं है। मीरा भजन करन लगी, लोक कहे मीरा भई बाबरी, सास कहे कुल नाशी रे। जिस परिवार कुल अते मर्यादा लई मीरा दी सास बिलख रही सी, आज उस कुलवंती सास नू कोई नहीं जानदा, मीरा नू संसार जानदा है। ठीक इसे प्रकार परिवार ले जो परेशान है उना दीवी कीर्ति कद तक रहेगी? जिस विच कीर्ति नहीं कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषा ने भुल के भी जिसका आचरण नहीं कीता ता सिद्ध है कि ओह अज्ञान है। इसलिए
क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप।
अर्जुन, नपुंसकता नु ना प्राप्त हो। की अर्जुन नपुंसक सी? की तुसी पुरुष हो? नपुंसक ओ है जो पुरुषार्थ तो हीन होवे। सब अपनी समझ नाल पुरुषार्थ ही ता करदे हन। किसान रात दिन खून पसीना इक करके खेत विच पुरुषार्थ ही ता करदा है। कोई व्यापार विच पुरुषार्थ समझदा है तो कोई पद दा दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनदा है। जीवन भर पुरुषार्थ करन ते भी खाली हाथ जाना पैंदा है। स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं है। शुद्ध पुरुषार्थ है आत्म दर्शन। गार्गी ने यज्ञ बल्कि नु कहा, ओहो पुरुष हुंदे हुए भी नपुंसक है जो हृदय स्थित आत्मा नु नहीं पछाणदा। ओह आत्मा ही पुरुष स्वरूप स्वयं प्रकाश उत्तम आनंद युक्त अते अव्यक्त है। उसनु पाउण दी कोशिश ही पौरुष है। अर्जुन तू नपुंसकता नु प्राप्त ना हो, यह तेरे योग नहीं है। हे परम तप, हृदय दी मामूली दुर्बलता नु त्याग के युद्ध ले खड़ा हो। आसक्ति दा त्याग कर, यह हृदय दी दुर्बलता मात्र है। इसते अर्जुन ने तीजा प्रश्न पेश कीता। अर्जुन उवाच,
कथम भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन।
अहंकार दा शमन करण वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि विच पितामा भीष्म अते आचार्य द्रोण नाल किस तरह तीरां नाल युद्ध करांगा, क्योंकि अरिसूदन ओह दोनों ही पूजनीय हन। द्वैत ही द्रोण है। प्रभु अलग हन, असी अलग हाँ। द्वैत दा एह पान ही प्राप्ति दी प्रेरणा दा आरंभिक स्रोत है। एहो द्रोणाचार्य दी गुरुआई है, परम ही भीष्म है। इसे करके बच्चे परिवार रिश्तेदार सब अपने लगते हैं। अपना लगन विच परम ही माध्यम है। आत्मा इना नू ही पूज्या मन के इना दे नाल रहंदी है कि एह पिता हन, दादा हन, कुलगुरु हन आदि। साधना दे पूर्णता काल विच गुरु न चेला, पुरुष अकेला।
न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।
जद चित उस परम आनंद विच वलीन हो जांदा है ता ना गुरु ज्ञान दाता अते ना शिष्य ग्रहण करता ही रह जांदा है। एहो परम दी स्थिति है। गुरु दी गुरुआई प्राप्त कर लैण ते दोना दी गुरुआई एक समान हो जांदी है। श्री कृष्ण कहंदे हन, अर्जुन तू मेरे विच निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, अते ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जांदा है। ऐसी अवस्था विच गुरु भी विलीन हो जांदा है। गुरुआई हृदय विच प्रवाहित हो जांदी है। अर्जुन गुरु पद नू टाल बना के इस संघर्ष विच आउण तो कतराउंदा है। ओह कहंदा है,
गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामास्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्।
इना महानुभावा गुरु जनानु मारन दे बजाए मैं इस लोक विच भिख्या दा अन्न भी चंगा समझदा हाँ। ਇੱਥੇ ਭਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਉਧਰ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੀ ਭਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਨਮ ਬ੍ਰਹਮੇਤੀ ਵਿਜਾਨਾਥ, ਅੰਨ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯਾਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਇਹੋ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਅੰਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਨੇਹ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਭਿਕਸ਼ਾ ਅੰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਨਾ ਕਰਕੇ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨਾ ਭਿਕਸ਼ਾ ਅੰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਕਤ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਅਰਥ ਅਰਥਾਤ ਧਨ ਅਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਭੋਗ ਹੀ ਤਾਂ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਜਨ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਅਰਥ ਅਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਭੋਗ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨ ਚੈਤਦ੍ਵਿਦਮਹ ਕਤਰੰਨੋ ਗਰੀਯੋ ਯਦ੍ਵਾ ਜਯੇਮ ਯਦਿਵਾਨੋ ਜਯੇਯੋ ਯਾਨੇਵ ਹਤ੍ਵਾ ਨ ਜਿਜੀਵਿਸ਼ਾਮਹ ਤੇਵ ਸਥਿਤਾ ਪ੍ਰਮੁਖੇ ਧਾਰਤਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ।
ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਮੋਹ ਆਦਿ ਸਵੈਜਨ ਸਮੂਹ ਮਿੱਟ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਜੁਨ ਫੇਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪਣ੍ਯ ਦੋਸ਼ੋਪਹਤ ਸਵਭਾਵ ਪ੍ਰਿਛਾਮਿ ਤ੍ਵਾਂ ਧਰਮ ਸੰਮੂਢ ਚੇਤਾ ਯਛ੍ਰੇਯਸ੍ਯਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਂ ਬ੍ਰੂਹਿ ਤਨ੍ਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯਸਤੇਹਂ ਸਾਧਿ ਮਾਂ ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਪੰਨਮ।
ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤਿ ਮੋਹਿਤ ਚਿੱਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਮ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂ, ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਲਓ। ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਖੜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਲੱਦ ਦੇ ਲਦਾ ਦੇ ਅਤੇ ਲਦਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਠਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲਦਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਅਨੇਕ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ पूर्णता तक हिरदे विच रह के साधक दे नाल चलदे हन। जे ओह नाल ना रहन तां साधना पार ना होवे।
नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्।
भूमि उत्ते निष्कंटक तन तान संपन्न राज नू अते देवत्यां दे राजपद इंद्रपद नू पाके भी मैं उस उपाय नू नहीं वेखदा जो मेरिया इंद्रिया नू सुकौन वाले सोग नू दूर कर सके। जद सोग बनिया ही है ता यह सब लैके मैं की करांगा। जे इतना ही मिलना है ता क्षमा करो। अर्जुन ने सोचिया हुन इस तो अगे दसणगे भी की। संजय उवाच।
एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेश परन्तप नयोत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः।
संजय बोल्या, हे राजन, मोह निशा जई अर्जुन दिलां दे जानी जान श्री कृष्ण नू एह कह के कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करांगा चुप हो गया। अजे तक अर्जुन दी दृष्टि पौराणिक है जिस विच कर्म कांडां दे नाल भोगां दी उपलब्धि दा विधान है जिस विच स्वर्ग ही सब कुछ मन्या जांदा है जिस उत्ते श्री कृष्ण प्रकाश पाउणगे एह विचारधारा भी गलत है।
तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः।
उसदे उपरांत हे पर्तवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनावां दे विच उस शोकमयी अर्जुन नू हसते हुए एह वचन कहे। श्री भगवान उवाच।
अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता।
अर्जुन, तू शोक ना करण योग लोकां लई शोक करदा है अते पंडितां वर्गे वचन कहंदा है, पर बुद्धि संपन्न पंडित जन जिन्हां दे प्राण चले गए हन उन्हां लई अते जिन्हां दे प्राण नहीं गए हन उन्हां लई भी शोक नहीं करदे क्योंकि ओह भी मर जाणगे। तू सिर्फ पंडितां वांग गल्लां ही करदा है, दरसल ज्ञाता है नहीं क्योंकि
नत्वेवाहं जातुनासं नत्वन्नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्।
ना ता ऐसा ही है कि मैं अर्थात सतगुरु किसे काल विच नहीं सन अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपा राजे लोकी अर्थात राजसी वृत्ति विच होण वाला अहम नहीं सी अते ना ऐसा ही है कि अगों असी सब नहीं रहांगे। सतगुरु सदा रहंदा है, अनुरागी सदा रहंदे हन। इथे योगेश्वर ने योग दी अनादिता ते प्रकाश पांदे होए भविख विच भी उसकी मौजूदगी उत्ते बल दिता। मरण वालियां लई सोग ना करन लई कारण दसदे होए उन्होंने कहा,
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति।
जिवें जीव आत्मा दी इस देह विच बचपन युवा अते वृद्ध अवस्था हुंदी है, उसे तरह होर होर शरीरां दी प्राप्ति विच तीर पुरुष मोहित नहीं हुंदा है। कदे तुसी बालक सो, सहजे सहजे जुवान हो गए, ता तुसी मरता नहीं गए, फिर वृद्ध होए। पुरुष एक ही है, उसे तरह लेश मात्र भी दरार नवी दे दी प्राप्ति उत्ते नहीं पैंदी। काया दा एह परिवर्तन तद तक चलेगा जब तक परिवर्तन तो परे दी वस्तु मिल नहीं जांदी।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत।
हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी ते गर्मी नु देण वाले इंद्रिया अते विषयां दे संजोग ता अनंत हन, छिण पंगुर हन। इसलिए परतवंशी अर्जुन तू इसका त्याग कर। अर्जुन, इंद्रियां अते विषय दे संजोग तो उपजे सुख दी याद करके ही व्याकुल से। कुल धर्म, कुल गुरुआं दी पूजनिकता आदि इंद्रियां दे लगाव दे तहत हन। एह क्षण भंगुर हन, झूठे हन, नाशवान हन। विषयां दा संजोग ना सदा मिलेगा अते ना सदा इंद्रियां विच समर्थता ही रहेगी। इसलिए अर्जुन, तू इना दा त्याग कर, बर्दाश्त कर। क्यों कि हिमालय विच लड़ाई सी, जो अर्जुन सर्दी बर्दाश्त करदा, जां कि एह रेगिस्तान दी लड़ाई है, जो अर्जुन गर्मी बर्दाश्त करे। कुरुक्षेत्र है, कुल 18 दिन तक लड़ाई हुई, इतने विच कित्थे सर्दी गर्मी बीत गई। दरअसल सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान बर्दाश्त करना एक योगी उत्ते निर्भर करदा है। एह हिरदे देश दी लड़ाई दा चित्रण है। एह किसे बाहरी युद्ध दे बारे गीता नहीं कहंदी। एह खेत्र खेत्रज्ञ दा संघर्ष है, जिस विच आसुरी संपत्ति दा पूर्ण शमन करके परमात्मा विच स्थिति दिवा के दैवी संपत्ति भी शांत हो जांदी है। जद विकार है ही नहीं, तब पितरी प्रवृत्तियां किस उत्ते हमला करन। इसलिए पूर्णता दे नाल ओह भी शांत हो जांदियां हन। इस तो पहला नहीं, गीता अंतरदेश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग तो मिलेगा की, इस तो लाभ की है। इसते श्री कृष्ण कहते हैं,
यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते।
क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख नु समान समझण वाले जिस तीर पुरुष नु इंद्रियां अते विषयां दे संजोग दुखी नहीं कर सकते, ओह मौत तो परे अमृत तत् दी प्राप्ति दे योग हो जांदा है। इत्थे श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत दी चर्चा कीती। अर्जुन सोचदा सी कि युद्ध दे परिणाम विच स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, पर श्री कृष्ण कहंदे हन कि ना स्वर्ग मिलेगा अते ना पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। अमृत की है,
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।
अर्जुन, असत्य वस्तु दा अस्तित्व नहीं है, ओह है ही नहीं, उसनु साम के रख्या नहीं जा सकदा, अते सत दा तिन्ना काला विच अभाव नहीं है, उसनु मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा कि भगवान होण दे नाते आप एह कहंदे हो? श्री कृष्ण ने दस्या, मैं ता कहंदा ही हां, इना दोना दा फरक साडे नाल नाल तत्त दर्शियां राही भी वेख्या गया है। श्री कृष्ण ने उही सत दोहराया जो तत्त दर्शियां ने कदे वेख लिया सी। श्री कृष्ण भी एक तत्त दर्शी महापुरुष सन, परम तत्त परमात्मा दा प्रतख दर्शन करके उस विच स्थिति प्राप्त करन वाले तत्त दर्शी कहोंदे हन। सत अते असत्य की हन, इस बारे कहंदे हन,
अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति।
नाश रहिता ओ है जिस नाल यह संपूर्ण जगत व्यापत है, इस अविनाशी दा विनाश करण विच कोई समर्थ नहीं है, पर इस अविनाशी अमृत दा नाम की है, ओह है कौन?
अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत।
अविनाशी अपार नित स्वरूप आत्मा दे एह सारे शरीर नाशवान कहे गए हन, इसलिए परतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर, आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, इसदा तिन्ना कालां विच नाश नहीं हुंदा, आत्मा ही सत्य है, शरीर नाशवान है, एह असत्य है जिसका तिन्ना काला विच अस्तित्व नहीं है, शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश तो यह स्पष्ट नहीं हुंदा कि अर्जुन केवल कौरवां नू मारे, पांडव पक्ष विच भी तां शरीर खड़े सन, कि पांडवां दे शरीर अविनाशी सन? जे शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा लई खड़े सन? कि अर्जुन कोई शरीर तारी सी? शरीर जो असत्य है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसनु रोकया नहीं जा सकता, कि श्री कृष्ण उस शरीर दी रक्षा ले खड़े हन? जे ऐसा है तो ओह भी अविवेकी अते मूढ़ हन, क्योंकि अगे श्री कृष्ण आप कहंदे हन कि जो केवल शरीर दे ले ही जीउंदा है, मेहनत करता है, ओह अविवेकी अते मूड बुद्धि है, ओह पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीउंदा है। आखिर अर्जुन कौन सी? दरअसल अनुराग अर्थात परमात्मा ली जिज्ञासा ही अर्जुन है, जिज्ञासु दे लई इष्ट सदा रथी बन के नाल रहंदे हन, सखा दी तरह उसका मार्गदर्शन करदे हन। तुसी शरीर नहीं हो, शरीर ता आवरण है, रहन दा मकान है, तुसी उस विच रहन वाले अनुराग परे आत्मा हो। भौतिक युद्ध नाल मारन कट्टन नाल शरीरां दा अंत नहीं हुंदा, एह शरीर छुट्टेगा ता आत्मा दूजा शरीर धारण कर लेगा। इसे संदर्भ विच श्री कृष्ण कह चुके हन कि जिस तरह बचपन तो युवा जा वृद्ध अवस्था आउंदी है, उसे तरह वख वख देह दी प्राप्ति हुंदी है, शरीर कटांगे ता जीवात्मा नवा वस्त्र बदल लेगा। शरीर संस्कारां दा आश्रित है अते संस्कार मन उत्ते आधारित हन।
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः।
मन दा पूरा निरोध होना अचल स्थिर ठहरना अते अंतिम संस्कार दा वलीन होना एक ही क्रिया है। संस्कारां दी सतह दा टूट जाना ही शरीरां दा अंत है। इसनू तोड़न दे लई तुहानू आराधना करनी होवेगी, जिसनू श्री कृष्ण ने कर्म जा निष्काम कर्म योग दा नाम दिता है। श्री कृष्ण ने थां थां ते अर्जुन नू युद्ध दी प्रेरणा दिती, पर एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध जा मार काट दा समर्थन करदा होवे। एह युद्ध भीतरी बाहरी प्रवृत्तियां दा है, अंतरदेश विच है।
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।
इस आत्मा नु मारे जान वाला जो मनदे हन अते जो इस आत्मा नु मरिया होया समझदे हन, ओह दोनों ही आत्मा नू नहीं जान दे, क्योंकि एह आत्मा ना ता मरदा है अते ना मारिया ही जांदा है। फिर इसे गल उत्ते बल देंदे हन।
न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
एह आत्मा किसे काल विच ना ता जमदा है अते ना मरदा है, क्योंकि एह वस्त्र ही ता बदलदा है। आत्मा होके एह कुछ होर होण वाला नहीं, क्योंकि एह अजन्मा है, नित है, शाश्वत अते पुरातन है। शरीर दा नाश होणते भी इसका नाश नहीं हुंदा। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत अते सनातन है। तुसी कौन हो? शाश्वत धर्म दे उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा अर्थात असी तुसी आत्मा दे उपासक हां। जे तुसी आत्मिक मार्ग नू नहीं जानदे तां तुहाडे पास शाश्वत सनातन नाम दी कोई चीज नहीं है। जो उस दे लई तुसी आह भरदे हो तां उसकी प्राप्ति जरूर चाहते हो, पर तुसी सनातन धर्मी नहीं हो। सनातन धर्म दे नाम उत्ते किसे कुरीति दे शिकार हो। देश विदेश विच मानव मात्र विच आत्मा इक्को जेहा है। इसलिए विश्व विच जिथे भी कोई आत्मा दी स्थिति दिवाउण वाली क्रिया जानदा है अते उस उत्ते चलण दे लई कोशिश करदा है तां ओह सनातन धर्मी है। चाहे ओह खुद नू ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कुछ भी कहंदा होवे।
वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्।
पार्थिव शरीर नू रथ बना के ब्रह्म रूपी लक्ष्य उत्ते अचूक निशाना लगाउण वाले प्रिथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा नू नाश रहित, नित, अजन्मा अते अव्यक्त समझदा है, ओह पुरुष किवें किसे नू मराउंदा है अते किवें किसे नू मारदा है? अविनाशी दा विनाश असंभव है, अजन्मा जन्म नहीं लेंदा। इसलिए ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਸਾਂਸਿ ਜੀਰਣਾਨਿ ਯਥਾ ਵਿਹਾਯ ਨਵਾਨਿ ਗ੍ਰਹਣਾਤਿ ਨਰੋ ਪਰਾਣਿ ਤਥਾ ਸ਼ਰੀਰਾਣਿ ਵਿਹਾਯ ਜੀਰਣਾ ਨਨਿਆਨਿ ਸੰਯਾਤਿ ਨਵਾਨਿ ਦੇਹਿ।
ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਰਣਾਨਿ ਵਾਸਾਂਸਿ ਜੀਰਣ ਸ਼ੀਰਣ ਅਰਥਾਤ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਰਣ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵਸਤਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਜੀਰਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ 1 ਸਵਾਸ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਕਲਪ ਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਜਰਤਾ ਅਮਰਤਾ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
अर्जुन, इस आत्मा नु शस्त्र नहीं काट सकदा, अग्नि इस नु जला नहीं सकदी ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਛੇਦਯੋਯਮ ਅਦਾਯੋਯਮ ਅਕਲੇਦਯੋਸ਼ੋਸ਼ੈਵ ਚ ਨਿਤਯ ਸਰਵਗਤ ਸਥਾਣੁ ਅਚਲੋਯਮ ਸਨਾਤਨ।
ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਛੇਦਯ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਦਾਇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਕਲੇਦਯ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅਸ਼ੋਸ਼ਯ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਅਚਲ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਲ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ? ਸਨਾਤਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਤਮਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਛੋਹਣ ਖਾਉਣ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੁਰੀਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਭੇਦਭਾਵ ਵਧਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਧਰਮਾਂ ਅਰਥਾਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਛੋਣ ਅਤੇ ਖਾਉਣ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਧਰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰੋਗੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਉਹ ਛੋਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ? ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ। ਸਨਾਤਨ ਤਾਂ ਐਸੀ ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਅਗਨੀ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਲ ਉਸਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਨਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੱਲ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਰੀਤੀ ਸੀ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਨਾਤਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਆਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਜਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि।
यह आत्मा अव्यक्त है अर्थात इंद्रियां दा विषय नहीं है। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਚਿੰਤਯ ਅਰਥਾਤ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਤ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੱਤਯ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਯ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤਯ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਅਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ, ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ, ਸਨਾਤਨ ਅਤੇ ਅਵਿਅਕਤ ਹੈ। ਤਤਦਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਤਤਦਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਨ ਦੇ ਨਿਰੋਧ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧਕ ਉਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗੁਣ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸੱਤ, ਸਨਾਤਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਚਿੰਤਯ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜੁਨ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਗ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ विरोधाभास दसते हन जो आम सहज तरक है।
अथ चैनम नित्यजातम् नित्यं वामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि।
जे तू इसनु सदा जम्मण वाला अते सदा मरण वाला मन्ने ता भी तेनु शोक नहीं करना चाहिदा, क्योंकि
जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।
ऐसा मन लैण ते भी जम्मण वाले दी निश्चित मौत अते मरण वाले दा निश्चित जन्म सिद्ध हुंदा है। इसलिए भी बिना उपाय वाले इस विषय ले तेरा शोक करना योग नहीं है। जिस तक कोई इलाज नहीं उस दे ले शोक करना एक होर दुख नू बुलाना है।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना।
अर्जुन, सारे प्राणी जन्म तो पहला बिना शरीर वाले अते मरण दे बाद भी बिना शरीर वाले हन। जन्म तो पहला अते बाद भी दिखाई नहीं देंदे, केवल जन्म मौत दे विच ही शरीर धारण कीते हुए दिखाई देंदे हन। इसलिए परिवर्तन दे बारे व्यर्थ चिंता क्यों करदे हो? इस आत्मा नू वेखदा कौन है? इसते कहंदे हन,
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।
पहला श्री कृष्ण ने कहा सी कि इस आत्मा नु तत्दर्शियां ने वेख्या है। हुण तत्दर्शियां दी दुर्बलता उत्ते प्रकाश पौंदे हन कि कोई विरला महापुरुष ही इस आत्मा नू आश्चर्य दी तरह वेखता है, सुनदा नहीं परतख वेखता है। अते उसे तरह दूजा कोई महापुरुष ही आश्चर्य दी तरह इस ते तत नू कहंदा है। जिसने वेख्या है ओह यथार्थ कह सकदा है, दूजा कोई विरला साधक इस नू आश्चर्य दी तरह सुनदा है। सब सुनदे भी नहीं, क्योंकि यह अधिकारी दे ले ही है। हे अर्जुन, कोई कोई ता सुन के भी इस आत्मा नू नहीं जान पौंदे, क्योंकि साधन पार नहीं लगदा। तुसी लख ज्ञान दियां गल्लां सुनो, समझो बाल दी खल कढ के समझो, उत्सुक भी रहो पर मोह बड़ा प्रबल है। थोड़ी देर बाद ही तुसी अपनियां संस्कारां व्यवस्थावां विच लिप्त नजर आओगे। अंत विच श्री कृष्ण निर्णय देंदे हन।
देही नित्यम अवध्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नत्वं शोचितुमर्हसि।
अर्जुन, एह आत्मा सब दे शरीर विच सदा ना मारन योग ना कट्टन योग है। इसलिए सारे भौतिक प्राणियां लई तू शोक करण योग नहीं है, आत्मा ही सनातन है। इस तत् दा प्रतिपादन करके विस्तार सहित वर्णन करके यह प्रश्न इत्थे ही पूरा हो जाता है। हुन प्रश्न उठता है कि इसकी प्राप्ति किवें होवे। संपूर्ण गीता विच इसते लई दो ही मार्ग हन। पहला मार्ग निष्काम कर्मयोग अते दूजा ज्ञान योग। दोनों मार्गों विच कीता जान वाला कर्म एक ही है। उस कर्म दी जरूरत उत्ते जोर देंदे होए योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान योग दे बारे कहंदे हन।
स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाश्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते।
अर्जुन, स्वै धर्म दे अनुसार भी तैनू पै नहीं करना चाहिदा, क्योंकि धर्म दे युद्ध तो वध के होर कोई परम कल्याणकारी मार्ग खत्री दे लई नहीं है। अजे तक ता आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, ओही एकमात्र धर्म है कहा गया है। हुण यह स्वै धर्म कैसा? धर्म ता एकमात्र आत्मा ही है, ओ ता अचल स्थिर है, ता धर्म आचरण की। पर इस आत्म मार्ग विच परवृत्त होण दी समर्था हर व्यक्ति दी वक वक हुंदी है। स्वभाव तो पैदा इस समर्था नू स्वै धर्म कहा गया है। इसे एक सनातन आत्मिक मार्ग उत्ते चलन वाले साधका नू महापुरुष ने स्वभाव तो उना दी समर्था दे अनुसार चार श्रेणिया विच वंडिया, शूद्र, वैश्य, खत्री अते ब्राह्मण। साधना दी आरंभक अवस्था विच हर साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ हुंदा है, अर्थात अल्प ज्ञानी हुंदा है। भजन विच बैठन ते ओह 10 मिनट भी अपने पक्ष विच नहीं प्राप्त करदा। ओह प्रकृति दे माया जाल नू कट नहीं पाउंदा। इस अवस्था विच महापुरुष दी सेवा नाल उसदे स्वभाव विच 7 गुण आउंदे हन। ओह वैश्य श्रेणी दा साधक बन जांदा है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इसदा ओह सहजे सहजे संग्रह अते गौ पालन अर्थात इंद्रियां दी सुरक्षा करन विच समर्थ हो जांदा है। काम क्रोध आदि नाल इंद्रियां दी हिंसा हुंदी है अते विवेक वैराग नाल इना दी सुरक्षा हुंदी है। पर प्रकृति नू निर्बीज करन दी समर्था उना विच नहीं हुंदी। क्रमवार उन्ती करदे करदे साधक दे अंतर मन विच तिन्ना गुणा नू करन दी समर्था अर्थात खत्रित्व आ जांदा है। इसे पद्धर ते प्रकृति अते उसदे विकारा नू नाश करन दी समर्था आ जांदी है। इसलिए युद्ध इत्थों ही आरंभ हुंदा है। क्रमवार साधना करके साधक ब्राह्मण तव दे पद्धर ते पहुंच जांदा है। इस समय मन दा शमन, इंद्रियां दा दमन, सिलसिलेवार चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान आदि लक्षण साधक विच स्वाभाविक प्रवाहित हुंदे हन। इना दे ही करण नाल सहजे सहजे क्रमवार ओह ब्रह्म विच प्रवेश पा जांदा है, जिथे ओह ब्राह्मण भी नहीं रह जांदा। विदेह राजा जनक दी सभा विच महारिषि यज्ञवल्क्य ने चक्रायण, उशस्ति, कहोल, आरुणी, उद्यालक अते गार्गी दे प्रश्ना दा समाधान करदे हुए दस्या कि आत्म साख्यातकार नू पूरी तरह प्राप्त करन वाला ही ब्राह्मण हुंदा है।
ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਤਾਰੇ, ਅੰਤਰਿਕਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਕੰਜੂਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਖੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਾਧਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਧਕ ਲਈ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਕੀ? ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਣ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਰਣ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਤੁਰਵਰਣਯਮ ਮਯਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਮ, ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਕਰਮ ਵਿਭਾਗਸ਼ਯ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਸੀ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੋਂ ਤਾਮਸਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਉਸ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੇਯਾਂਸਵ ਧਰਮੋ ਵਿਗੁਣਹ ਪਰ ਧਰਮਾ ਸਵਨੁਸ਼ਟਿਤਾਤ। ਸਵਾਵ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਣ ਰਹਿਤ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਖੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਾਧਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਜੁਨ, ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭੈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्।
पार्थिव शरीर नु ही रथ बना के अचूक लक्ष्य पे दी अर्जुन खुद ब खुद मिले स्वर्ग दे खुले हुए ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ
ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਖੱਤਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਸੰਪੱਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਰ ਅਰਥਾਤ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਖੇਤਰਗਿਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਖੱਤਰੀ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਮਟ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋਗ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਖੇਤਰਗਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि।
अते जे तू एह धर्मयुक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा विच ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿਉਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਵੈ ਧਰਮ ਅਰਥਾਤ ਸਵਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਪਾਪ ਅਰਥਾਤ ਆਵਾਗਮਨ ਅਤੇ ਅਪਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਕੀਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते।
सब लोकी बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति दा वर्णन करनगे। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ, ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਮੀ, ਸ਼੍ਰੰਗੀ ਆਦਿ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਐਸਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਪਕੀਰਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਯਾਦ੍ਰਣਾਦੁਪਰਤਮ मौस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।
जिना महारथियां दी निगाह विच तू बड़ा मानयोग होके हुण तुच्छता नू प्राप्त होवेगा, ओह महारथी लोक तैनू भय दे कारण युद्ध तों उपराम होया मन्नणगे। महारथी कौन? इस मार्ग उत्ते महान मेहनत नाल अग्गे बदन वाले साधक महारथी हन। इसे प्रकार इतनी ही मेहनत नाल अविद्या वाल खिच्चन वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भी महारथी हन, जो तैनू बड़ा मान देंदे सन कि साधक प्रशंसा योग है, तुसी उना दी निगाह तो गिर जाओगे। इतना ही नहीं बल्कि
अवाच्य वादांश्च बहु वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्।
वैरी लोकी, तेरे पराक्रम दी निंदा करते हुए ना कहन योग बहुत सारे वचन कहेंगे। एक दोष आंदा है ता चारों पासियों निंदा अते बुराइयां दी झड़ी लग जांदी है, ना कहन योग वचन भी कहे जांदे हन, इस तो बड़ा दुख की होवेगा। इसलिए
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय।
इस युद्ध विच मरोगे ता स्वर्ग प्राप्त करोगे, स्वर्ग विच रहन दी समर्था रहेगी, स्वास दे बाहर प्रकृति विच रहन दिया तारावां निरुद्ध हो जानगिया, परम देव परमात्मा विच प्रवेश द्योण वाली दैवी संपत्ति हृदय विच पूरी तरह प्रवाहित रहेगी। अथवा इस संघर्ष विच जितन ते महामहिम वाली स्थिति नू प्राप्त करोगे। इसलिए अर्जुन युद्ध दे ले संकल्प करके खड़ा हो। अक्सर लोग की इस श्लोक दे अर्थ विच ए समझदे हन कि इस युद्ध विच मरोगे ता स्वर्ग जाओगे अते जित्तोगे ता पृथ्वी दा भोग भोगोगे, पर तुहानू याद होवेगा अर्जुन कह चुक्या है भगवन पृथ्वी ही नहीं सगों तिन्नों लोकां दे सम्राज अते देवत्यां दा राजपद अर्थात इंद्रपद प्राप्त होण ते भी मैं उस उपाय नू नहीं वेखदा जो इंद्रियां नू सुकाउण वाले मेरे सोग नू दूर कर सके। जे इतना ही मिलना है ता गोबिंद मैं युद्ध कदे नहीं करांगा। जे इतने ते भी श्री कृष्ण कहंदे कि अर्जुन लड़ो जित्तोगे ता पृथ्वी पालोगे, हारोगे ता स्वर्ग दे नागरिक बन जाओगे, ता श्री कृष्ण देंदे ही की हन। अर्जुन इस तो अग्गे दा सत्य श्रेय अर्थात परम कल्याण दी कामना वाला शिष्य सी जिसनू सत गुरुदेव श्री कृष्ण ने दस्या कि खेत्र खेत्रज्ञ दे इस संघर्ष विच जे शरीर दा समा पूरा हो जांदा है अते लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके ता स्वर्ग प्राप्त करोगे अर्थात स्वर्ग विच ही जीवन दी समर्था प्राप्त कर लोगे, दैवी संपत्ति हृदय विच टल जाएगी अते जे इस शरीर दे रहंदे रहंदे संघर्ष विच सफल हो जांदे हो तां महिम सब तो महान ब्रह्म दी महिमा दा उपयोग करोगे, महामहिम दी स्थिति प्राप्त कर लोगे, जित्तोगे ता सब कुछ पाओगे क्योंकि महामहिम तब नू प्राप्त करोगे अते हारोगे ता दिवत्व पाओगे। दोना हत्थां विच लड्डू रहनगे, लाभ विच भी सब अते हानि विच भी लाभ ही है। इसे गलते फिर जोर देंदे हन
सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जया ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।
इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय नु समान समझ के तू युद्ध लई तैयार हो, युद्ध करण नाल तू पाप नू प्राप्त नहीं होवेगा अर्थात सुख विच सब कुछ है अते दुख विच भी दिवत्व है। जय विच महामहिम स्थिति अते पराजे विच भी दैवी संपत्ति उत्ते अधिकार है। इस तरह अपने लाभ हानि नू चंगी तरह आप समझ के तू युद्ध दे लई तैयार हो। लड़न विच ही दोनों चीजा हन, लड़ेगा ता पाप अर्थात आवागमन नू प्राप्त नहीं होवेगा, इसलिए युद्ध दे लई तैयार हो।
एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां श्रृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि।
पार्थ एह मत तेरे लिए ज्ञान योग दे बारे विच कही गई है। केड़ी मत एहो कि युद्ध कर। ज्ञान योग विच इतना ही नहीं कि अपनी समर्था नू वेख के अग्गे वधना है, लाभ हानि दा पली प्रकार विचार करके कि जित्तांगे ता महामहिम स्थिति अते हारांगे ता देवत्व। जय विच सब कुछ अते पराजय विच भी देवत्व, दोना तरह लाभ है। युद्ध ना करांगे ता सारे बुरा कहेंगे, पै नाल उपराम होया मन्नणगे, अप कीर्ति होवेगी। इस तरह अपने अस्तित्व नू सामने रख के आपे विचार करके युद्ध विच अग्गे वधना ही ज्ञान योग है। अक्सर लोकां विच गलत धारणा है कि ज्ञान मार्ग विच कर्म अर्थात युद्ध नहीं करना पैंदा। ओह कहंदे हन कि ज्ञान मार्ग विच कर्म नहीं है, मैं ता शुद्ध हां, चैतन्य हां, अहम ब्रह्मामी गुण ही गुण विच वर्तदे हन। ऐसा मन के हाथ ते हाथ धर के बैठ जांदे हन। योगेश्वर श्री कृष्ण दे अनुसार एह ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग विच भी ओही कर्म करना है जो निष्काम कर्म योग विच कीता जांदा है। दोना विच केवल बुद्धि दा दृष्टिकोण दा अंतर है। ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझ के अपने उत्ते निर्भर होके कर्म करदा है, जबकि निष्काम कर्म योगी इष्ट उत्ते निर्भर होके कर्म करदा है। करना दोना मार्गां विच है अते ओह कर्म भी एक ही है जिसनू दोना मार्गां विच कीता जांदा है। केवल कर्म करन दे दृष्टिकोण दो हन। अर्जुन इसे मत नू हुण तू निष्काम कर्म दे बारे विच सुन, जिस नाल युक्त होया तू कर्मा दे बंधन दा चंगी तरह नाश करेगा। इत्थे श्री कृष्ण ने कर्म दा नाम पहली वार लिया, पर एह नहीं दस्या कि कर्म की है। हुण कर्म ना दस के पहला कर्म दिया विशेषतावां उत्ते प्रकाश पौंदे हन।
नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
इस निष्काम कर्म योग विच आरंभ दा अर्थात बीज दा नाश नहीं हुंदा, सीमित फल वर्गा दोष नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म दी इस कर्म नाल पैदा होए धर्म दी थोड़ी भी साधना जन्म मौत रूपी महान भय तो उद्धार कर देंदी है। तुसी इस कर्म नू समझो अते उस उत्ते दो कदम बस चल दियो, बस बीज पा दियो ता अर्जुन बीज दा नाश नहीं हुंदा। प्रकृति विच ऐसी कोई समर्था नहीं, ऐसा कोई अस्त्र नहीं कि उस सत्य नू मिटा देवे। प्रकृति केवल आवरण पा सकती है, कुछ देर कर सकती है, पर साधना दे आरंभ नू मिटा नहीं सकती। अगे श्री कृष्ण ने दस्या कि सारे पापियों तो भी बड़ा पापी ही क्यों ना होवे, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निरसंदेह पार हो जाएगा। ठीक उसे गल नू इत्थे कहंदे हन कि अर्जुन निष्काम कर्म योग दा बीजा रोपण मात्र कर दियो ता उस बीज दा कदे नाश नहीं हुंदा। विपरीत फल रूपी दोष भी इस विच नहीं हुंदा कि तुहानू स्वर्ग रिद्धियां जा सिद्धियां तक पहुंचा के छड़ देवे। तुसी एह साधना भावे छड़ दियो पर एह साधना तुहाडा उद्धार करके ही छड़ेगी। इस निष्काम कर्म योग दी थोड़ी जेही भी साधना जन्म मौत दे महान भय तो उद्धार कर देंदी है। अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। कर्म दा एह बीजा रोपण अनेक जन्म दे बाद ओथे ही खड़ा कर देवेगा जिथे परम धाम है, परम गति है। इसे क्रम विच अगे कहंदे हन।
व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां।
अर्जुन इस निष्काम कर्म योग विच क्रियात्मक मत एहो है, क्रिया एक ही है अते परिणाम एक ही है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इस संपत्ति नू प्रकृति दे संघर्ष विच सहजे सहजे अर्जित करना व्यवसाय है। यह व्यवसाय अथवा निश्चय रूपी क्रिया भी एक ही है। तां ते जो लोकी बहुत सारियां क्रियावां करदे हन कि ओह भजन नहीं करदे। श्री कृष्ण कहंदे हन हां ओह भजन नहीं करदे, उना पुरशां दी बुद्धि अनंत शाखावां वाली हुंदी है, इसलिए अनंत क्रियावां दा विस्तार कर लैंदे हन।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेष बहुधा भोगैश्वर्यगतिं प्रति।
पार्थ कामात्मानः
ओह कामनावां नाल युक्त
वेदवादरता
वेद दे वाकां विच अनुराग अर्थात जिज्ञासा वाले स्वर्ग परा स्वर्ग नू ही परम लक्ष्य मनदे हन कि इस तो अगे कुछ है ही नहीं। ऐसा कहण वाले अविवेकी लोक जन्म मौत रूपी फल देण वाली भोग अते ऐश्वर्य दी प्राप्ति लई बहुत सारियां क्रियावां दा विस्तार कर लैंदे हन अते बनावटी शोभामयी बाणी वचना राही उसनू व्यक्त भी करदे हन। अर्थात अविवेकियां दी बुद्धि अनंत भेदां वाली हुंदी है। ओह फल वाले वाक विच ही अनुराग रखते हन, देह दे वाकां नू प्रमाण मनदे हन, स्वर्ग नू श्रेष्ठ मनदे हन। उना दी बुद्धि बहुत सारे भेदां वाली है, इसलिए अनंत क्रियावां दी रचना कर लैंदे हन। ओह नाम ता परम तत् परमात्मा दा ही लैंदे हन पर उसदी ओट विच अनंत क्रियावां दा विस्तार कर लैंदे हन। तां की अनंत क्रियावां कर्म नहीं हन? श्री कृष्ण कहंदे हन नहीं, अनंत क्रियावां कर्म नहीं हन।
ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕ੍ਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਵਿਵੇਕੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੰਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਨੰਤ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਲੰਕਾਰਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते।
उना दे बचना दी छाप जिस जिस दे चित उत्ते पै जांदी है, अर्जुन उस दी भी बुद्धि नष्ट हो जांदी है, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀਮਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਆਤਮਕ ਕ੍ਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਸੇ ਅਵਿਵੇਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭੋਗ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮ ਅਤੇ ਆਦਿ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਆਤਮਕ ਕ੍ਰਿਆ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਵਾਦਰਤਾ, ਜੋ ਵੇਦ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਤ੍ਰੈਗੁਣ੍ਯ ਵਿਸ਼ਯਾ ਵੇਦਾ ਨਿਸਤ੍ਰੈਗੁਣ੍ਯੋ ਭਵਾਰਜੁਨ ਨਿਰਦਵੰਦਵੋ ਨਿਤ੍ਯ ਸਤਵਸਥੋ ਨਿਰਯੋਗ ਕ੍ਸ਼ੇਮ ਆਤਮਵਾਨ।
ਅਰਜੁਨ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ੍ਯ ਵਿਸ਼ਯਾ ਵੇਦਾ, ਵੇਦ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ
ਨਿਸਤ੍ਰੈ ਗੁਣਿਓ ਭਵਾਰਜੁਨਾ,
ਅਰਜੁਨ ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ, ਅਰਥਾਤ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਜਾਏ? ਇਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਦਵੰਦ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਵੰਦਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਤ ਸਤਿ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਖੇਮ ਅਰਥਾਤ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮ ਪਰਾਇਣ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉੱਠੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਪ੍ਰ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ।
ਯਾਵਾਨਰਥ ਉਦਪਾਨੀ ਸਰਵਤਃ ਸੰਪਲੁਤੋਦਕੇ ਤਾਵਾਂ ਸਰਵੇਸ਼ੁ ਵੇਦੇਸ਼ੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸਯ ਵਿਜਾਨਤਾ।
ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤਲਾਬ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ। ਅਰਜੁਨ ਖੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਆਦਿ ਵਰਣ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ,
ना कि जन्म तो निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। जिसनु गंगा दी तारा प्राप्त है उसनु तुच्छ तालाब नाल की मतलब। कोई उस नाल शौच साफ करता है, कोई पशुआ नु नुहा देंदा है, इस तो वद उपयोग नहीं है। इसे प्रकार ब्रह्म नु साख्यात जानन वाले उस विप्र महापुरुष दा, उस ब्राह्मण दा वेदा नाल उतना ही प्रयोजन रह जांदा है। प्रयोजन रहंदा जरूर है, वेद रहंदे हन, क्योंकि पिछे वालियां लई उना दा उपयोग है, उत्थों ही चर्चा आरंभ होवेगी। इस तो उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करदे समय रखियां जान वालियां सावधानियां दा वर्णन करदे हन।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि।
कर्म करण विच ही तेरा अधिकार होवे, फल विच कदे नहीं। ऐसा समझ कि फल नहीं ही हन, फल दी वासना वाला भी ना हो, अते कर्म करण विच तेरी अश्रद्धा भी ना होवे। हुण तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक विच पहली बार कर्म दा नाम लिया, पर यह नहीं दस्या कि ओ कर्म है कि अते उसनु करिए किवें। उस कर्म दियां विशेषतावां उत्ते प्रकाश पाया कि अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्मां दे बंधन तो चंगी तरह छुट जाएगा। अर्जुन, इस विच आरंभ दा अर्थात बीज दा नाश नहीं है। आरंभ कर दिए ता प्रकृति दे पास कोई तरीका नहीं कि उसनु नष्ट कर देवे। अर्जुन, इस विच सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग रिद्धियां सिद्धियां विच फसा के खड़ा कर देवे। अर्जुन, इस कर्म दी थोड़ी भी साधना जन्म मरण दे पै तो उद्धार करण वाली हुंदी है। पर अजे तक उन्होंने यह नहीं दस्या कि ओ कर्म है कि कीता किवें जावे। इसे अध्याय दे 41वें श्लोक विच उन्होंने दस्या, अर्जुन, इस विच निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है, ता कि बहुत सारियां क्रियावां वाले भजन नहीं करदे। श्री कृष्ण कहंदे हन ओह कर्म नहीं करदे। इसका कारण दसते हुए ओ कहंदे हन कि अविवेकियां दी बुद्धि अनंत शाखावां वाली हुंदी है, इसलिए ओह अनंत क्रियावां दा विस्तार कर लेंदे हन। ओह दिखावटी शोभामयी वचना विच इना क्रियावां नू व्यक्त भी करदे हन। उना दे बचना दी छाप जिना दे चित ते पै जांदी है उना दी बुद्धि भी नष्ट हो जांदी है। इसलिए निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, पर यह नहीं दस्या कि ओह क्रिया केड़ी है। 47वें श्लोक विच उन्होंने कहा, अर्जुन, कर्म करण विच ही तेरा अधिकार है, फल विच कदे नहीं। फल दी वासना वाला भी ना हो अते कर्म करण विच भी तेरी अश्रद्धा ना होवे, अर्थात निरंतर करण दे लई उसे विच लीन होके करिए, पर यह नहीं दस्या कि ओह कर्म की है। अक्सर इस श्लोक दा उदाहरण देके लोकी कहंदे हन कि कुछ भी करो, केवल फल दी कामना ना करो, हो गया निष्काम कर्म योग। पर अजे तक श्री कृष्ण ने दस्या ही नहीं कि कर्म है केड़ा जिसनु करिए। एथे केवल कर्म दियां विशेषतावां उत्ते प्रकाश पाया कि कर्म देंदा की है, अते कर्म नु करदे समय वर्तियां जान वालियां सावधानियां की हन, उना उत्ते प्रकाश पाया। प्रश्न ज्यों दा त्यों बनिया होया है, जिसनु योगेश्वर अगे अध्याय 3-4 विच स्पष्ट करणगे। ओह फिर इसे उत्ते बल दिंदे हन।
इतस्ततः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।
धनंजय, आसक्ति अर्थात स्नेह अते संग दोष नु त्याग के सिद्धि अते असिद्धि विच समान भाव रख के योग विच स्थित होके कर्म कर। केड़ा कर्म? निष्काम कर्म कर। समत्वम योग उच्चते, एह समत्व भाव ही योग कहौंदा है। रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाउंदियां हन, आसक्ति सानू विषम बनाउंदी है, फल दी इच्छा विषमता पैदा करदी है। इसलिए फल दी वासना ना होवे, फिर भी कर्म करण विच अश्रद्धा ना होवे, देखिया सुनिया सारिया वस्तुआ विच आसक्ति दा त्याग करके प्राप्ति अते अप्राप्ति दे बारे विच ना सोच के केवल योग विच स्थित रहंदे होए कर्म कर। योग तो चित विचलित ना होवे। योग एक पराकाष्ठा दी स्थिति है अते एक आरंभ दी स्थिति भी हुंदी है। आरंभ विच भी साड़ी दृष्टि लक्ष्य उत्ते ही रहनी चाहिदी है। इसलिए योग उत्ते दृष्टि रखदे होए कर्म दा आचरण करना चाहिदा है। समत्व भाव अर्थात सिद्धि अते असिद्धि विच सम भाव ही योग कहौंदा है। जिसनु सिद्धि अते असिद्धि विचलित नहीं कर पौंदी, विषमता जिस विच पैदा नहीं हुंदी, ऐसा भाव होण दे कारण एह समत्व योग कहौंदा है। एह इष्ट नाल समता दिउंदा है, इसे ले इसनु समत्व योग कहंदे हन। कामनावां दा पूरा त्याग है, इसलिए इसनु निष्काम कर्म योग कहंदे हन। कर्म करना है, इसलिए इसनु कर्म योग कहंदे हन। परमात्मा नाल मेल कराउंदा है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इस विच बौद्धिक पद्धर ते ध्यान रखना पैंदा है कि सिद्धि अते असिद्धि विच सम भाव रहे, असक्ति ना होवे, फल दी वासना ना आ सके। इसलिए एहो निष्काम कर्म योग बुद्धि योग भी कहा जाता है।
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः।
धनंजय, अवरम कर्म तुच्छ कर्म वासनावां वाले कर्म बुद्धि योग तो दूर हन, फल दी कामना वाले कंजूस हन, ओह आत्मा दे नाल उदारता नहीं कर दे। इसलिए समत्व बुद्धि योग दा आसरा ग्रहण कर। जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए ता उसनु भोगण दे लई शरीर धारण करना पेगा। आवागमन बनया है ता कल्याण कैसा? साधक नु ता मोक्ष दी वी वासना नहीं रखनी चाहिदी, क्योंकि वासनावां तो मुक्त होना ही ता मोक्ष है। फल दी प्राप्ति दा चिंतन करन नाल साधक दा समा व्यर्थ नष्ट हो जांदा है अते फल प्राप्त होण ते ओह उस फल विच उलझ जांदा है, उसकी साधना समाप्त हो जांदी है। अगे ओह भजन क्यों करे, उत्थे ओह पटक जांदा है। इसलिए समत्व बुद्धि नाल योग दा आचरण करो। ज्ञान मार्ग नू भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा सी कि अर्जुन, एह बुद्धि तेरे लई ज्ञान योग दे बारे विच कही गई। अते एथे निष्काम कर्म योग नू भी बुद्धि योग कहा गया। दरअसल दोनों विच बुद्धि दा दृष्टिकोण दा ही अंतर है। उस विच लाभ हानि दा रिकॉर्ड रख के उसनु जांच के चलाना पैंदा है। इस विच भी बौद्धिक पद्धर ते समत्व बनाई रखना पैंदा है। इसलिए इसनु समत्व बुद्धि योग कहा जांदा है। इसलिए धनंजय तू समत्व बुद्धि योग दा आसरा ग्रहण कर, क्योंकि फल दी वासना वाले अति कंजूस हन।
बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम्।
समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों नु ही इसे लोक विच त्याग देंदा है, उना विच लिप्त नहीं हुंदा। इसलिए समत्व बुद्धि योग दा आचरण कर।
योग कर्मसु कौशलम,
समत्व बुद्धि दे नाल कर्मा दा कुशलता पूर्वक आचरण ही योग है। संसार विच कर्म दे दो दृष्टिकोण प्रचलित हन। लोक कर्म करदे हन तां उसका फल भी अवश्य चाहुंदे हन, जा फल ना मिले ता कर्म करना ही नहीं चाहुंदे। पर योगेश्वर श्री कृष्ण इना कर्मा नू बंधनकारी दसते हुए आराधना नू एकमात्र कर्म मनदे हन। इस अध्याय विच उना ने कर्म दा सिर्फ नाम लिया। अध्याय 3 दे 9वें श्लोक विच उसकी परिभाषा दित्ती अते चौथे अध्याय विच कर्म दे स्वरूप उत्ते विस्तार नाल प्रकाश पाया। प्रस्तुत श्लोक विच श्री कृष्ण ने संसारक परंपरा तो हटके कर्म करण दी कला दसी कि कर्म ता करो, समर्था पूर्वक करो, पर फल दे अधिकार नू अपनी इच्छा नाल छड़ दियो। फल जाएगा किथे? एहो कर्मा नू करण दा कौशल है। निष्काम साधक दी सारी शक्ति इस तरह कर्म विच लगी रहंदी है। आराधना दे लई ही ता शरीर है, फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि सदा कर्म ही करदे रहना है जा इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा। इसनु वेखिए
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्।
बुद्धि योग नाल युक्त ज्ञानी लोक कर्मा तो पैदा होण वाले फल नू त्याग के जन्म अते मरण दे बंधन तो छुट जांदे हन। ओह निर्दोष अमृतमयी परम पद नू प्राप्त हुंदे हन। अर्जुन दी दृष्टि त्रिलोकी दे सम्राज अते देवत्यां दे राजपद तक ही सीमित सी। इतने तक दे लई भी ओह युद्ध विच प्रवृत्त नहीं हो रहा सी। इत्थे श्री कृष्ण उसनू नवे तत् समझाउंदे हन कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामयी अर्थात बेनाम पद प्राप्त हुंदा है। निष्काम कर्म योग परम पद दिउंदा है जिथे मौत दा प्रवेश नहीं है। इस कर्म विच प्रवृत्ति कदों होवेगी?
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च।
जिस काल विच तेरी अर्थात हर साधक दी बुद्धि मोह रूपी दल दल नू पूरी तरह पार कर लेगी, लेश मात्र भी मोह नहीं रह जाएगा, ना पुत्र विच, ना धन विच, ना प्रतिष्ठा विच, इना सब तो लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनन योग है उसनु तू सुन सकेगा अते सुने हुए दे अनुसार वैराग नु प्राप्त हो सकेगा। अर्थात उसनु आचरण विच टाल सकेगा। अजे तक जो सुनन लायक है उसनु ना ता तू सुन सकया है अते आचरण दाता प्रश्न ही नहीं उठता। इसे योग्यता ते फिर प्रकाश पौंदे हन।
श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि।
अनेक प्रकार दे वेद वाकानु सुन के विचलित होई तेरी बुद्धि जदों परमात्म स्वरूप विच समाधि मई होके अचल स्थिर ठहर जाएगी ता तू समत्व योग नु प्राप्त होमेगा, पूर्ण सम स्थिति नु प्राप्त करेगा, जिसनु अनामय परम पद कहंदे हन। एहो योग दी पराकाष्ठा है अते एहो अप्राप्त दी प्राप्ति है। वेदां तो ता सिख्या ही मिलती है, पर श्री कृष्ण कहंदे हन श्रुति विप्रीति पन्ना, श्रुतियां दे अनेक सिद्धांतां नूं सुनन नाल बुद्धि विचलित हो जांदी है। सिद्धांत तां अनेक सुने पर जो सुनन योग है लोक उस तों दूर ही रहंदे हन। एह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि विच स्थिर हो जाएगी तां तू योग दी पराकाष्ठा अमृत पद नूं प्राप्त करेगा। इसते अर्जुन दी उत्कंठा स्वाभाविक सी कि ओह महापुरुष कैसे हुंदे हन जो अनामय परम पद विच स्थित हन, समाधि विच जिना दी बुद्धि स्थिर है। उसने प्रश्न कीता, अर्जुन उवाच।
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्।
समाधियते चित्तम यस्मिन् सह आत्मा एव समाधिः,
जिस विच चित्त दा समाधान कीता जाए ओह आत्मा ही समाधि है। अनादि तत् विच जो समत्व प्राप्त कर लवे उसनु समाधिस्थ कहंदे हन। अर्जुन ने पूछया, केशव समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले महापुरुषां दे की लक्षण हन? स्थिर प्रज्ञ अर्थात बुद्धि जा विवेक विच स्थित पुरुष किवें बोलदा है, ओह किमें बैठदा है, ओह किमें चलदा है? चार प्रश्न अर्जुन ने कीते। इसते भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञा दे लक्षण दसते हुए कहा, श्री भगवान उवाच।
रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते।
पार्थ, जद मनुख मन विच स्थित संपूर्ण कामनावां नूं त्याग देंदा है तां ओह आत्मा तो ही आत्मा विच संतुष्ट होया स्थिर बुद्धि वाला कहा जांदा है। कामनावां दे त्याग नाल ही आत्मा दा मार्गदर्शन हुंदा है। ऐसा आत्मा राम आत्म तृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है।
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते।
देहक दैवी अते भौतिक दुखां विच जिसदा मन व्याकुल नहीं हुंदा, सुखां दी प्राप्ति विच तृष्णा दूर हो गई है अते जिसदे राग भय अते क्रोध नष्ट हो गए हन, मननशीलता दी चरम सीमा ते पहुंचा होया ओह मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जांदा है। उसदे होर लक्षण ओ दसते हन।
यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
जो पुरुष हर थां स्नेह रहित होया, शुभ अथवा अशुभ नु प्राप्त होके ना ता प्रसन्न हुंदा है अते ना द्वेष करदा है, उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ ओ है जो परमात्म स्वरूप विच लगाउंदा है, अशुभ ओ है जो प्रकृति दे वल ले जान वाला हुंदा है। पर स्थित प्रज्ञा पुरुष अनुकूल परिस्थितियां तो ना प्रसन्न हुंदा है अते ना प्रतिकूल परिस्थितियां तो द्वेष करदा है, क्योंकि प्राप्त होने योग वस्तु ता उस तो पिन है अते ना पतित करण वाले विकार ही उसते लई हन, अर्थात हुन साधना नाल उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा। ऐसा मनुख स्थित प्रज्ञ कहा जांदा है।
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
जिस तरह कछुआ अपने अंगा नु समेट लैंदा है, ठीक उसे तरह यह पुरुष जद सब पासियां तो अपने चित नु समेट लैंदा है ता उसकी बुद्धि स्थिर हुंदी है। खतरे नु वेखदे ही कछुआ जिस तरह अपने सिर अते पैरां नु समेट लैंदा है, ठीक इसे तरह जो पुरुष विषयां विच जीवन वालियां इंद्रियां नु सब पासियों समेट के हिरदे देश विच निरोध अर्थात स्थिर कर लैंदा है, उस काल विच उस पुरुष की बुद्धि स्थिर हुंदी है। पर यह ता केवल एक दृष्टांत है। खतरे का एहसास मिटदिया ही कछुआ ता अपने अंगा नु मुड़ फैला देंदा है कि इसे तरह स्थित प्रज्ञा महापुरुष भी विषयां विच रस लैण लगदा है। इस ते ओ कहंदे हन,
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते।
इंद्रियां राही विषयां नूं ग्रहण करन वाले पुरुषां दे विषय तां दूर हो जांदे हन, क्योंकि ओ ग्रहण ही नहीं करदे, पर उना दा राग नहीं दूर हुंदा, आसक्ति लगी रहिंदी है। संपूर्ण इंद्रियां नूं विषयां तो समेटण वाले निष्काम कर्मी दा राग भी परम दृष्टवा परम तत् परमात्मा दा साक्षात्कार करके दूर हो जांदा है। महापुरुष कछुए दी तरह अपनियां इंद्रियां नूं विषयां विच नहीं फैलाउंदा। एक बार जद इंद्रियां सिमट गईयां तां संस्कार ही मिट जांदे हन, फिर नहीं निकलदे। निष्काम कर्म योग दे आचरण द्वारा परमात्मा दे प्रतख दर्शन दे नाल उस पुरुष दा विषयां तो राग भी दूर हो जांदा है। अक्सर चिंतन मार्ग विच हठ कीता जांदा है। हठ नाल इंद्रियां नु रोक के उस विषय तो तां दूर हो जांदे हन, पर मन विच उना दा ध्यान राग लगा रहिंदा है। एह आसक्ति परम दृष्टवा परमात्मा दा साख्यातकार करन दे बाद ही दूर हुंदी है, इस तो पहला नहीं। पूज्य महाराज जी इस संबंध विच अपनी घटना दस्या करदे सन। गृह त्याग तो पहला उन्हां नूं 3 वार आकाशवाणियां होईयां सन। असी पूछया, महाराज जी आप नूं आकाशवाणी क्यों होई, असां लोकां नूं तां नहीं होई। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਓਏ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧੂ ਹਾਂ। 4 ਜਨਮ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਭਭੂਤ ਮਲ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਮੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯੋਗ ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕ੍ਰਿਆ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਲੱਗ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ, ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਅਰਥਾਤ ਨਿਵੇੜਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2 ਇੱਛਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗਾਂਝਾ। ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਿਖਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ, 2-3 ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਟਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।
कौन्त्य यतन करण वाले प्रतिभावान पुरुषां दियां मोहमयी इंद्रियां ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਤਾਨਿ ਸਰਵਾਣੀ ਸੰਯਮ੍ਯ ਯੁਕਤ ਆਸੀਤ ਮਤਪਰਹ ਵਸ਼ੇ ਹੀ ਯਸੇਂਦ੍ਰਿਯਾਣੀ ਤਸਯ ਪ੍ਰਗਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯਮਿਤ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਧਾਤਮਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਵੀਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸੰਯਮ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਧ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਟ ਚਿੰਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਟ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਪਰਿਣਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते।
विषयां दा चिंतन करण वाले पुरुष दी उन्हां विषयां विच आसक्ति हो जांदी है। ਅਸਕਤੀ ਤੋਂ ਕਾਮਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ अर्चन आउण नाल क्रोध पैदा हुंदा है। क्रोध किसनु जन्म देंदा है?
क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
क्रोध तो विशेष मूर्ता अर्थात अविवेक पैदा हुंदा है। नित अनित वस्तु दा विचार नहीं रह जांदा। अविवेकी नाल याद शक्ति प्रमित हो जांदी है, जिमें अर्जुन होया सी। ब्रह्म तिवच में मनह गीता दी समाप्ति ते उसने कहा,
नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा,
की करिए कि ना करिए इसका फैसला मुश्किल हो जांदा है। यादाश्त प्रमित होण नाल योग प्रायण बुद्धि नष्ट हो जांदी है, अते बुद्धि नष्ट होण नाल ओह पुरुष अपनी श्रेष्ठ साधना तो हट जांदा है। इत्थे श्री कृष्ण ने बल दिता है कि विषयां दा ध्यान नहीं करना चाहिदा। साधक नू नाम रूप लीला अते ताम विच ही किदरे लगे रहना चाहिदा है। भजन विच ढिल देण नाल मन विषयां विच जाएगा, विषयां दे ख्याल नाल आसक्ति हो जांदी है। आसक्ति नाल उस विषय दी कामना साधक दे अंतर मन विच होण लगदी है। कामना दी पूर्ति विच अड़चन आउण नाल क्रोध, क्रोध तो अविवेक, अविवेक तो यादाश्त परम अते यादाश्त परम तो बुद्धि नष्ट हो जांदी है। निष्काम कर्म योग नू बुद्धि योग कहा जांदा है, क्योंकि बुद्धि पद्धर ते इस विच विचार रखना चाहिदा है कि कामनावां ना आ सकन, फल है ही नहीं। कामनावां आउण नाल एह बुद्धि योग नष्ट हो जांदा है। विचार जरूरी है, विचार रहित पुरुष श्रेष्ठ साधना तो हेठ गिर जांदा है। साधना क्रम टूट जांदा है, पूर्ण नष्ट नहीं हुंदा। भोग दे पश्चात साधना उत्थों ही फिर शुरू हुंदी है जिथे टूट गई सी। एह तां विषयां तो प्रेरित साधक दी गति है। स्वाधीन हिरदे वाला साधक किस गति नू प्राप्त हुंदा है? इस ते श्री कृष्ण कहंदे हन,
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।
आत्मा दी विधि नु प्राप्त प्रत्यक्ष दर्शी महापुरुष राग द्वेष तो रहित वश विच कीतियां होईयां अपनियां इंद्रियां द्वारा
विश्यान चरण
विषयां विच रहंदे होए भी
प्रसाद मदि गच्छति
हिरदे दी निर्मलता नू प्राप्त हुंदा है। ओह अपनी भाव दृष्टि विच रहंदा है। महापुरुष लई विधि निषेध नहीं रह जांदे। उस दे लई किदरे भी अशुभ नहीं रहंदा जिस तो ओह बचाव करे, अते उस दे लई कोई शुभ बाकी नहीं रह जांदा जिस दी ओह कामना करे।
प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते।
भगवान दे पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता नाल संयुक्त होण ते उसदे सारे दुखां दा अभाव अर्थात लोप हो जांदा है। दुखालयम अशाश्वतम संसार दा अभाव हो जांदा है, अते ओह प्रसन्न चित वाले पुरुष दी बुद्धि छेती ही भली भांति स्थिर हो जांदी है। ਪਰ ਜੋ ਯੋਗ ਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਾਸਤਿ ਬੁੱਧਿਰ ਯੁਕਤਸਯ ਨ ਚਾਯੁਕਤਸਯ ਭਾਵਨਾ ਨ ਚਾਭਾਵਯਤਃ ਸ਼ਾਂਤਿਹ ਅਸ਼ਾਂਤਸਯ ਕੁਤਃ ਸੁਖਮ।
ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਰਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਯੁਕਤ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਅਯੁਕਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਰਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਿੱਥੇ? ਯੋਗ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਬਿਨੂ ਨਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤੀ, ਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇੰਦ੍ਰਿਯਾਣਾਂ ਹੀ ਚਰਤਾਂ ਯਨਮਨੋਨੁਵਿਧੀਯਤੇ ਤਦਸਯ ਹਰਤਿ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵਾਯੁਰਨਾਵਮਿਵਾਂਭਸਿ।
ਜਲ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਉਸ ਅਯੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਦਾ ਆਚਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਆਚਰਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਮਾਦਯਸਯ ਮਹਾਬਾਹੋ ਨਿਗ੍ਰਹੀਤਾਨਿ ਸਰਵਸ਼ਃ ਇੰਦ੍ਰਿਯਾਣਿ ਇੰਦ੍ਰਿਯਾਰਥੇਭ੍ਯਃ ਤਸਯ ਪ੍ਰਗਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤਾ।
ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਮਹਾਬਾਹੋ, ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹੂ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਬਾਹੂ ਅਤੇ ਅਜਾਨੂ ਬਾਹੂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸੇ ਭਗਵਤਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮਹਾਬਾਹੂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਬਾਹੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾ ਨਿਸ਼ਾ ਸਰਵਭੂਤਾਨਾਂ ਤਸਿਆਂ ਜਾਗਰਤਿ ਸੰਯਮੀ ਯਸਿਆਂ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਭੂਤਾਨਿ ਸਾ ਨਿਸ਼ਾ ਪਸ਼ਯਤੋ ਮੁਨੀ।
ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸੰਸਕਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯੋਗੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾ ਅਰਥਾਤ ਰਾਤ ਹੈ। ਰਮਾ ਵਿਲਾਸੁ ਰਾਮ ਅਨੁਰਾਗੀ ਤਜਮ ਬਮਨ ਜਿਮ ਜਨ ਬੜਭਾਗੀ। ਜੋ ਯੋਗੀ ਪਰਮਾਰਥ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਜਗ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਉਦਾਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, महापुरुष दी इसे रहिणी दा चित्रण वेखिए।
आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी।
जिमें अथा अचल स्थिति वाले समुंदर विच सब पास्यों नदियां दे जल उसनु विचलित ना करदे होए बड़े वेग नाल उस विच समा जांदे हन, ठीक उसे तरह परमात्मा विच स्थित प्रज्ञा पुरुष विच सारे भोग विकार पैदा किते बिना समा जांदे हन। ऐसा ही पुरुष परम शांति नु प्राप्त हुंदा है, ना कि भोगां नु चाहुण वाला। भयंकर वेग नाल बहन वालियां हजारां नदियां दे स्रोत फसलां नु नष्ट करदे होए, हत्यावां करदे होए, नगरां नु डोबदे होए, हाहाकार मचांदे होए बड़े वेग नाल समुंदर विच डिगदे हन, पर समुंदर नु ना एक इंच उपर उठा पाउंदे हन अते ना ही घटाउंदे हन, सगों उसे विच समाहित हो जांदे हन। ठीक इसे तरह साख्यात प्रज्ञ महापुरुष दे वल सारे भोग उसे वेग नाल आउंदे हन पर समाहित हो जांदे हन। उना महापुरुषां विच ओह ना शुभ संस्कार पा सकदे हन अते ना ही अशुभ। योगी दे कर्म अशुक्ल अते अकृष्ण हुंदे हन, क्योंकि जिस चित उत्ते संस्कार पैंदे हन उसका निरोध अते वलीनीकरण हो गया, इस दे नाल ही भगवत्ता दी स्थिति आ गई। हुण संस्कार पैण वी तां किथे। इस इको श्लोक विच श्री कृष्ण ने अर्जुन दे कई प्रश्नां दा समाधान कर दिता। उसकी जिज्ञासा सी कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण की हन, वो किवें बोलता है, किवें बैठता है, किवें चलता है। श्री कृष्ण ने इको शब्द विच उत्तर दिता कि वह समुंदर दे समान हुंदे हन। उना दे लई विधि निषेध नहीं हुंदा कि इस तरह चले जा इस तरह बैठे। ਉਹ ਹੀ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਯਮੀ ਹਨ, ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਹਾਯ ਕਾਮਾਨ੍ਯ ਸਰਵਾਂ ਪੁਮਾਂਸ਼ਚਰਤਿ ਨਿਸਪ੍ਰਹ निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति।
जो पुरुष सारियां कामनावां नु त्याग के निर्मम है, मैं अते मेरे दे भाव अते अहंकार ते तृष्णा तो रहित होया रहिंदा है, ओह उस परम शांति नु प्राप्त हुंदा है, जिस दे बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता।
एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति।
पार्थ, उपरोक्त स्थिति ब्रह्म नु प्राप्त होए पुरुष की स्थिति है। समुंदर समान उना महापुरुषां विच विषय नदियां वांग समा जांदे हन। ओह पूर्ण संयमी अते प्रत्यक्ष रूप विच परमात्मा दर्शी हन। अहम ब्रह्मास्मी पढ़ लैण नाल जा रैट लैण नाल साधना करके ही इस ब्रह्म दी स्थिति नु पाया जा सकता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्म निष्ठा विच स्थित रहंदे होए शरीर दे अंत काल नु भी ब्रह्मानंद नु ही प्राप्त हुंदा है। सार, अक्सर कुछ लोकी कहंदे हन कि दूजे अध्याय विच गीता पूरी हो गई, पर जे केवल कर्म दा नाम मात्र लैण नाल कर्म पूरा हो जांदा होवे तां गीता दी समाप्ति मन्नी जा सकती है। इस अध्याय विच योगेश्वर श्री कृष्ण ने इहो दस्या कि अर्जुन निष्काम कर्म योग दे बारे विच सुन, जिसनु जान के तू संसार बंधन तो छुट जाएगा। कर्म करण विच तेरा अधिकार है, फल विच कदे नहीं। कर्म करण विच तेरी अश्रद्धा भी ना होवे, निरंतर करण दे लई तत्पर हो जा। इस दे परिणाम विच तू परम त्रिष्टवा परम पुरुष दा दर्शन करके स्थित प्रज्ञा बनेगा, परम शांति पाएगा। पर यह नहीं दस्या कि कर्म है कि यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है। यह नाम शास्त्रकार दा नहीं सगों टीकाकारां राही दित्ता नाम है। ओह अपनी बुद्धि दे अनुसार ही ग्रहण करदे हन ता अचरज की है। इस अध्याय विच कर्म दी श्रेष्ठता, इसनु करण विच वर्ती जान वाली सावधानी अते स्थित प्रज्ञा दे लक्षण दस के श्री कृष्ण ने अर्जुन दे मन विच कर्म दे प्रति उत्कंठा जागृत कीती है। उसनु कुछ प्रश्न देते हन, आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसनु जान के तत्दर्शी बनो। इसदी प्राप्ति दे दो साधन हन, ज्ञान योग अते निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति नु समझ के हानि लाभ दा आप निर्णय लेके कर्म विच प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, अते इस तुत्ते निर्वर होके समर्पण दे नाल उसे कर्म विच प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग जां भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोना दा चित्रण इस तरह कीता है, मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, जन ही मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपु आही। मेरे दो तरह दे भजने वाले हन, एक ज्ञान मार्गी दूजे भक्ति मार्गी। निष्काम कर्म मार्गी जां भक्ति मार्गी शरणागत होके मेरा आसरा लेके चलदा है। ज्ञान योगी अपनी शक्ति सामने रख के अपनी हानि लाभ दा विचार करके अपने भरोसे चलदा है, जबकि दोनों दे शत्रु इको हन। ज्ञान मार्गी नू काम क्रोध आदि शत्रुआं ते जित पाउणी है, अते निष्काम कर्म योगी नू भी इना नाल ही युद्ध करना है। कामनावां दा त्याग दोवें करदे हन, अते दोनों मार्गां विच कीते जाण वाला कर्म भी इको है। इस कर्म दे परिणाम विच परम शांति नू प्राप्त हो जाओगे। पर यह नहीं दस्या कि कर्म है कि हुण तुहाडे भी सामने कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन दे मन विच भी कर्म दे प्रति जिज्ञासा हुई। तीजे अध्याय दे आरंभ विच ही उसने कर्म संबंधी प्रश्न पेश कीता, इसलिए ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म जिज्ञासा नाम द्वितीयो अध्याय। इस तरह श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद अते ब्रह्म विद्या अते योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अते अर्जुन दे संवाद विच कर्म जिज्ञासा नामक दूजा अध्याय पूरा होया। इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भगवद् गीताया यथार्थ गीता भाष्य कर्म जिज्ञासा नाम द्वितीय अध्याय। इस तरह श्रीमत परमहंस परमानंद जी दे शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता विच कर्म जिज्ञासा नामक दूजा अध्याय पूरा हुंदा है।
हरि ओम तत्सत।
Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.